ஓம் சாந்தி. பாபா கே கர் மே தபஸ்யா கே இஸ் வாதாவரண் கே பீச் ஆப் சப் தீன் சார் தின் சே ஆத்ம சுத்தி கே அனுபவ தோ கர் ஹி ரஹே ஹேன். ஜேசே ஜேசே யோக சக்திசாலி ஹோதா ஜாதா ஆத்மா அப்னே ஆப் மே ஸ்வச்ச சுத்த ஹோதி ஜாதி ஹே. கித்னி அச்சி கிளாசஸ் மிலி, இத்தனா அச்சா வாதாவரண் மிலா, ஔர் மதுபன் கே இஸ் தபஸ்யா ஸ்தலி மே ஜஹாம் ஸ்வயம் ப்ரஹ்மா பாபா நே தபஸ்யா கி, மாதேஸ்வரி நே தபஸ்யா கி, ஹமாரி தீதி தாதி நே தபஸ்யா கி, கித்னி மஹான் ஆத்மாய் இஸ் தபஸ்யா ஸ்தலி பர் தபஸ்யா கர்கே யஹாம் கே வாதாவரண் கோ பஹுத் சக்திசாலி பனாயா ஹே. மே சமஜ்தா ஹூம் ஆப் சப்னே அபி அனுபவ் கியா ஹோகா கி யஹாம் பர் யோக லகானே கி மெஹ்னத் நஹி லக்தி, கண கண சே தேரி யாத் ஆதி ஹே. தோ பாபா கி இஸ் தபஸ்யா ஸ்தலி மே ஜெய்சே பாபா நே சார் தாம் பனாய் ஹே, ஹர் ஏக் தாம் கி அப்னி விசேஷதா ஹே, லேக்கின் யே தோ ஸ்தான் ஜோ ஹே பாபா கி குட்டியா ஔர் பாபா கா கம்ரா. ப்ரஹ்மா பாபா நே கேசே தபஸ்யா கி, க்யா லக்ஷ்ய ரக் கர்கே தபஸ்யா கி, க்யோங்கி ஜப் ஷிவ் பாபா கி ப்ரவேஷ்தா ஹுயி தோ ஐசே தோ பாபா கை பார் கேதே மே பதித் தன் மே ஆதா ஹூம், லேக்கின் உஸ் பதித் தன் கோ பாபா நே பஹலே பாவன் பனா கே சுத்த கர்கே ஃபிர் ப்ரவேஷ் கியா, டைரக்ட் உஸ்மே நஹி ப்ரவேஷ் கர் லியா. பக்தி கே அந்தர் பி பாபா கே படே அச்சே சுத்த சன்ஸ்கார் தே, தான புண்ணிய கே சன்ஸ்கார் பி தே, குருவோ மே ஸ்ரத்தா பி தி, பாவனா பி தி, ஔர் பஹுத் ஸ்ரத்தா பாவனா சே சத்சங் கர்தே தே, ஏகாந்த மே விசேஷ தபஸ்யா பி கர்தே தே. பாபா கி 1932 கி டாயரி மே ஜோ பாபா நே குத் வர்ணன் கியே ஹே, அப்னே ஹாத்தோ சே லிகா ஹே, உஸ்மே யஹி லிகா ஹே கி ஆத்மா மாலிக ஹே, ராஜா ஹே, ஔர் யே மன் புத்தி கர்ம இந்திரியா உன்கி ப்ரஜா ஹே. தோ ராஜா கே கண்ட்ரோல் மே பிரஜா க்யோ நஹி ரஹதி, ஜப் மே குரு கா தியான் கர்தா ஹூம் தோ யே மன் பட்கதா க்யோ ஹே, இதர் உதர் கே க்யாலாத் க்யோ சல்தே ஹே. உஸ் பர் பஹுத் கண்ட்ரோல் கியா ஔர் சுத்த பன் கர்கே பவித்ர பன் கர்கே ஜப் ரத் தயார் ஹோ கயா தப் ஸ்ரீ பாபா நே உஸ்மே ப்ரவேஷ் கியா. தோ வோ சுத்தி கே லியே உன்னோனே ஏகாந்தவாஸ் கியே, தபஸ்யா கி, பக்தி கி, பஹுத் அச்சே சத்சங் கியே. அப் சமய அனுசார் பாபா கேதே ஹே ஹரேக் ஆத்மா கோ ஸ்வயம் புருஷார்த் கர்கே அப்னே ஆப் கோ சுத்த பனானா ஹே, ஸ்வச்ச பனானா ஹே. தோ ஆத்ம சுத்தி கே லியே ஹம் சமய ப்ரசமய பட்டியா கர்தே ஹே, யோக அப்யாஸ் கர்தே ஹே, ஔர் விசேஷ கர்கே சக்திசாலி யோக ஜிஸ்கே அந்தர் விக்ரம் விநாசம் சன்ஸ்கார் பரிவர்த்தன் ஹோ உஸ்கே லியே சமய நிகாலதே ஹே. சேவா கேந்திரோ பர் பி சமய ப்ரசமய பட்டியா ஹோதி ஹே, சவேரே ஷாம் கோ சப் அப்னே கரோ மே பி யோக கர்தே ஹே. ஹம் சப்கா லக்ஷ்ய தோ யஹி ஹே கி ஆத்மா ஜிஸ் தரஹ சே அப்னே கர் பரம்தாம் சே இஸ் ஸ்ருஷ்டி மஞ்ச் பர் ஆயி தி, சம்பூர்ண பாவன் தி, பஹுத் சுத்த பவித்ர ப்ரவிருத்தி தி, ப்ரகிருதி பி சதோ பிரதான் தி, சுத்த தி, ஔர் ஆத்மா கி பி சர்வ கலாயே உன்மே சம்பன்னதா தி, சம்பூர்ணதா தி. லேக்கின் சக்கர கே அந்தர் ஆகர் புனர்ஜனம் லேத்தே லேத்தே சங்க கா ரங் லக் கயா, தேஹ கே சங் கா ரங் ஆத்மா கோ லக் கயா. ஆத்மா கா சங் தேஹ கோ நஹி லகா, லேக்கின் தேஹ கே சாத் பாட் பஜாத்தே பஜாத்தே இன் விகாரோ கி அதீன்தா கே காரண் உஸ்மே अशुद्धता आती गई। जितना जितना देह अभिमान बढ़ता गया उतना विकारों ने इस आत्मा को अशुद्ध कर दिया, पतित बना दिया। फिर साधन अपनाए, भक्ति की, पूजा की, गंगा स्नान किए, बहुत सारे साधन समय पर समय अपनाते रहे, उसके कारण कुछ न कुछ संस्कार शुद्ध रहे, पवित्र रहे, लेकिन फिर भी गिरावट देह अभिमान के कारण ऐसी हुई जो आज हम सब जानते हैं। हर आत्मा इस देह अभिमान के अधीन होने के कारण कितनी पतित, कितनी मलेच, कितने आसुरी संस्कार बन गए। मैं एक बार बॉम्बे में ही आया था कुछ समय पहले, मुलुंद में नहीं, दूसरी जगह। तो एक भाई मेरी गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते मुझे कहता है, मैं अपना एक अनुभव सुनाऊं। कहा जरूर सुनाओ, अनुभव तो सुनना ही चाहिए। कहता है, भाई साहब मैं जो था ना रावण का भी बाप था। रावण का बाप जब उसने कहा तो मैं ऐसे देखा, हमने कहा क्या बोलते हो भाई, रावण की तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन रावण का बाप क्या होगा। कहता है कि मैं इतनी तो शराब पीता था, इतना मलेच कर्म करते थे, कोई भी दुनिया का गंदा काम मैंने न किया हो ऐसा नहीं है। और मैं जब घर से निकलता था तो लोग अपने दरवाजे दुकानें बंद कर लेते थे। बहुत गुस्सा था, बहुत गालियां देता था, बहुत गंदे संस्कार थे। ऐसे कहते कहते बोलता है, जिस दिन बाबा मिल गया उसी दिन से वो सारी गंदगी साफ हो गई। और एकदम रोने लगा, आंसू आ गए भर आए। तो मैं समझता हूं एक तपस्या तो आत्म शुद्धि का आधार है ही, लेकिन बाबा का मिलना और निश्चय हो जाना, उस निश्चय के आधार से वो आत्मा शुद्ध हो गई। कहती है, ऐसे शराब छूटी, ऐसे बीड़ी सिगरेट छूटी, गुस्सा करना छूट गया। लोग कहते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों ने जादू कर दिया है, कैसे सुधार दिया इसको, सारे समाज की सेवा हो गई, वो ज्वेलर है बड़ा। कहते सारी दुकान दिवाले में चली गई, कोई मेरी दुकान पर आता ही नहीं था, बिकना तो दूर, कुछ पैसा ही नहीं था, लेकिन मैं इधर उधर से ले ले करके सब गलत काम किए, बहुत पतित बन गया, बहुत विकारी बन गया। और बाबा जिस दिन मिला उस दिन से बाबा ने मुझे पूरा कीचड़ से निकाल करके कमल बना दिया। बहुत खुशी के आंसू, प्यार के आंसू थे। तो हम सभी भी अपने पुराने संस्कारों को जानते हैं, पिछले पास्ट में तो बहुत कुछ विकारों के, देह अभिमान के अधीन होकर के विकर्म हुए हैं, और इन विकर्मों के कारण आत्मा पर मैल चढ़ती गई, मैल पर मैल चढ़ती गई। संस्कार इतने प्रबल हो गए जो ब्राह्मण बनने के बाद इतना अच्छा संग, इतना अच्छा भोजन, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी अच्छी पालना, इतना श्रेष्ठ परिवार, इतनी सब प्राप्तियां होते हुए भी बीच बीच में वो पुराना पिछला संस्कार बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उस संस्कार को संस्कार नहीं किया। जैसे कहते हैं कोई अगर शरीर छोड़ देता तो शरीर छोड़ने के बाद उसका संस्कार कर दो, और संस्कार करने के बाद जो उसकी राख बचती है, हड्डियों की भी राख बचे, हड्डियां बचे, उसको पानी के अंदर बहा दो, रखना नहीं, रखेंगे तो भूत आएगा, इसलिए रखते नहीं। हमारे भारत के अंदर तो बड़ी अच्छी प्रथा बनी हुई है कि उसको ले जाकर के गंगा में, जमुना में, नदी में, कहीं भी प्रवाहित कर देते हैं, रखेंगे नहीं राख को, चाहे जितना उसका पुंह हो, प्यार हो, लेकिन कहेंगे नहीं, इसको नहीं रखना। तो बाबा कहता है कई बच्चों ने उन संस्कारों को, राख को अपने पास छिपा करके रख लिया, आई बेल के लिए, कभी काम आ जाएगा। इतना अटैचमेंट उसके साथ हो गई जो उसको छोड़ नहीं सकते। कहते क्या करूं, समय पर अगर कोई कहना नहीं मानता तो गुस्सा तो करना पड़ता है ना, बोलना तो पड़ेगा ना, आंख तो दिखानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी प्रवृत्ति के अंदर चल सकते हैं हम, कोई भी विकार न हो, कोई अशुद्धि न हो, ये तो जब देवता बनेंगे तब हो सकता है, मनुष्य आत्मा को तो नहीं लगता है। काम जल्दी हो जाता है इसलिए चाहिए वो। अच्छा, लेकिन स्थिति बिगाड़ करके काम कराया। अच्छा लेकिन अगर सचमुच एक बल एक भरोसा है, बाबा पर संपूर्ण निश्चय है, तो बाबा के बच्चों का कोई भी काम आज तक बचा रुका नहीं है, अपने आप बाबा कराता है। विश्वास पक्का चाहिए, इसलिए बड़े शीतल सरल स्वच्छ जो बन गए रह रहे हैं उस स्थिति में, ऐसे नहीं कोई नहीं है, हैं ऐसे परिवार हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, उदाहरण रूप हैं यहाँ पर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिन्होंने इन विकारों को जीता है, एग्जाम्पल हैं। और कोई भी कार्य में कभी भी जोश में आके गुस्से में ना आकर के, मेरा खुद का अपना यह अनुभव है, आज मुझे 45-47 साल मधुबन में सेवाएं करते हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट, और ऐसे नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट में सब देवता ही हैं, सब नीचे ऊपर कर देते हो जाता है, तीनों जगह डिपार्टमेंट हैं और बहुत जवाबदारी की सेवाएं हैं, ऐसे नहीं हम चला दें हो जाएगा, चाहे मुरली की सेवा है, पत्र पुष्प की सेवा है, आज इतनी सारी पोस्ट आती है, मनी ऑर्डर्स आते हैं, सबका जवाब देना, सबके पत्रों का उत्तर देना, सबको लेके ही चलना पड़ता, अकेले तो मैं कर भी नहीं सकता हूँ, और अगर नहीं करें तो उनको मैं आंख दिखाऊं, गुस्सा करूं, जोर से बोलूं। मुझे तो आज तक ये अनुभव नहीं है कि मेरी डिपार्टमेंट में 8 लोग काम करते हैं, कोई कहे कि आज भाई साहब का मूड मेरे से ठीक नहीं था, जोश में बोला, ऐसे बोल दिया। मैं कहता हूँ ठीक है अगर नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत समय बाहर रहता हूँ, कई कार्य ऐसे होते हैं जो मुझे खुद करने पड़ते, करता हूँ, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि ये काम क्यों नहीं तुमने किया। जोश में आके अब शब्द बोल करके गुस्से में कोई कह दूं, मैंने यही एक ध्यान रखा, क्योंकि जब शुरू शुरू में आया मैं अकेले था डिपार्टमेंट में, और अकेले होते हुए भी बहुत सारी जवाबदारियां, क्योंकि जो हाँ जी करते हैं ना उनको बहुत काम मिलते हैं, ना करते हो तो घूमते हैं, लेकिन हाँ कर लिया तो माना उनको मिलता जाएगा। तो हम भी समझते थे मेरा भाग्य है कि मैं खूब बिजी रहूं, अभी भी वही भाग्य वैसा ही है, खूब बिजी, जरा भी टाइम नहीं मिलता कि मैं इधर उधर बैठूं, किसी से बात करूं, कहीं पिकनिक करने चला जाऊं, मैं कहीं घूमने चला जाऊं, घूमने भी जाता हूं तो वहां भी 4-5 क्लास हो जाते हैं, इधर करा दो, इधर मिल लो, इधर चले जाओ। करा रहा है बाबा, कराने वाला करा रहा है, लेकिन अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे चिड़चिड़ेपन में आकर के जवाब नहीं देना है, था मेरे अंदर भी ये संस्कार, क्योंकि मेरा ऑफिस और मेरा कमरा एक साथ मिला मुझे, तो ऑफिस के टाइम पर लोग नहीं आते, लेकिन जब सो जाते थे तभी आके उठाते थे, ये काम कर दो बहुत जरूरी, बहुत अर्जेंट है, अभी अभी चाहिए, तो थोड़ा सा तो अंदर लगता था, जवाब ठीक नहीं निकलता था, मूड खराब हो जाता था। तो मैंने बहुत ध्यान दिया इस बात पर कि जब हम कहते हैं हम सदा सेवा पर हैं, 24 घंटे की सेवा हमारी है, तो इसलिए कोई को भी ऐसे शब्दों में जवाब नहीं देना है। ध्यान दिया, अटेंशन रखा, तो लगा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और जब हम बाबा के ऊपर समर्पित हैं तो समर्पित बच्चे अगर संकल्प कर लेते हैं तो उनको सहयोग भी मिलता है, और ऐसे ऐसे सहयोग मिले हैं मुझे, अगर अपने अनुभव में मैं देखूं, ऐसे सहयोग मिले हैं कि जो संकल्प करो सहयोगी हाजिर हो जाता है, यहां पर इस सहयोग की जरूरत है, इस समय जरूरत है, बाबा दे देता है। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आत्मा को किसी भी विकार के अधीन करके अशुद्ध नहीं बनने देना है। जब हम शुद्धता की मंजिल को पाना चाहते हैं, 100% प्योर बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी में केवल एक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, पांचों ही विकार और उनके बहुत सारे बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत आवेश आवेग आलस्य अलबेलापन, इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। कभी एकांत में बैठ करके इन पर गौर करके देखो, विचार करो कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि मुझ आत्मा को नंबर वन से नंबर टू थर्ड फोर्थ में तो नहीं ले जाएगी, गिरा तो नहीं देगी। लक्ष्य ऊंचा रखो, लक्षण अपने आप आते जाएंगे। और लक्ष्य के प्रमाण अपने संकल्पों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आज यहाँ आए मधुबन के अच्छे वातावरण में, अच्छे संग में, इतनी अच्छी तपस्या के बीच में संकल्प ले लिया, हाँ हम यहाँ से ये संकल्प लेते हैं, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। उस माहौल में गए, चलो वहां की वहां रही, भाई वहां तो वातावरण था, वहां तो संघ था, अभी तो ऐसी बातें आ गई, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, हमको तो जवाब देना ही पड़ेगा, हमको तो करना ही पड़ेगा। ये जो कमजोर संकल्प है यही अशुद्धि के मूल कारण है। तपस्या कहा ही जाता है जिस संकल्प में दृढ़ता हो। तपस्या माना ऐसे नहीं बैठ गया करके 5-10 मिनट आधा घंटा बैठे और लहरें आने लगी नींद की। दृढ़ संकल्प, संकल्प इतने शक्तिशाली हो, करेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, उसको ही तपस्या कहा जाता है। आज देखो हमारे भक्ति के अंदर हठ योगियों ने जो तपस्या की है, जो आज तक भी आप मेलों में जाते हैं, कुंभ मेले में देखते होंगे, कई ऐसे हठ योगी होते हैं, संकल्प कर लेते हैं मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा, 24 घंटे खड़ा रहूंगा। एक हमारे देवरिया बाबा यहाँ थे, वो पानी के अंदर खड़े रहते थे, पानी के अंदर ही खड़े रहते थे, संकल्प था ना। तो दृढ़ता का संकल्प, बाबा ने हमें ये हठ योग तो छोड़ा दिया, ऐसा तो हट करना मना कर दिया, नहीं करना है। लेकिन सहज योग का मतलब ये नहीं अलबेलेपन के योग करो। सहज योग श्रेष्ठ योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है, और ये तपस्या के आधार से संस्कार परिवर्तन करता है, बिना तपस्या के नहीं करता। तो तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संकल्प, संपन्न संकल्प, एक बाबा दूसरा न कोई, इसको ही तपस्या कहा जाता। और ऐसी तपस्या आप निरंतर कर सकते हो, एक दो घंटे के लिए नहीं। संकल्प करो सवेरे सवेरे उठ करके, जिस प्रकार का संकल्प करोगे वो बातें उसी प्रकार से आएंगी पेपर बन करके। लेकिन मुझे पास होना है, मुझे इस बात पर विजयी बनना है। तो देखना, कई बार कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसके मान की, नाम की कोई ना कोई आशा लेकर के चलता है, कम से कम मैंने किया है तो लोगों को पता तो चले मैं इतना करता हूं, मैंने सेंटर बना के दिया है, मैंने बहनों को गाड़ी लेकर के दिया है, मैं मधुबन में इतना भेजता हूं। कल मैं एक जगह गया था, एक भाई ऐसे ही आया, कच्छ भुज की तरफ मैं था कल, तो उस समय आजकल वो निकलती है खजूर, बहुत निकलती है ना, खजूर भेजी होगी तो उन्हें वर्णन करना शुरू कर दिया, इतना भेजा मैंने मधुबन में, ये ले जाओ, आप भी ले जाओ, ये ले जाओ। मेरा एक भाव ये रहता है कि कोई भी कुछ कर्म किया जाए, जैसे बाबा ने किया, एक हाथ से किया, इस हाथ को भी पता नहीं चलने दिया। आज जो बाबा का यज्ञ इतना आगे बढ़ा है, चल रहा है, किसने कितना किया है, क्या करता है, कहीं किसी का नाम है, किसी की स्पेशल खातरी की जा रही है, करने वाले बहुत गुप्त रीति से बाबा के यज्ञ को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। लेकिन कई होते हैं जो महिमा के, नाम के, शान के करेंगे जरूर, लेकिन करने के बाद उसकी अपेक्षाएं इतनी होती हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, किया और खत्म कर दिया। उसी समय फल, प्रत्यक्ष फल महिमा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे चेक करो, ये आत्मा को शुद्ध बनने में रुकावटें हैं और कुछ नहीं। जो शुद्धता आनी चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, ब्रह्मा बाबा ने किन किन बातों का ध्यान रखा जो कर्मातीत बन गए। बाबा की मूर्तियां तो कभी कभी ऐसे कहती हैं जैसे बाबा ने कुछ किया ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं किया। कल जैसे बाबा कह रहे थे ना, बच्चे बड़ी मेहनत है, मेरे सामने बहुत तूफान आते हैं। कभी कभी बाबा ऐसी मुरली करा देते हैं जो बच्चे समझते हैं हाँ बाबा के सामने जरूर आते होंगे, तब तो बाबा ऐसा कह रहा है। लेकिन बाबा जानता है कि बच्चों को जरूर मेहनत लगती होगी, क्योंकि देह अभिमान के बहुत कड़े संस्कार हैं। नहीं तो बाबा इतना कहे कि बच्चे शिव बाबा की मैं बाजू में बैठा हूं फिर भी मुझे भूल जाता है, कल था मुरली में ना, मैं बाजू में बैठा हूं फिर भी मैं भूल जाता हूं। लेकिन अगर भूल जाता होता तो इतनी जल्दी कर्मातीत नहीं बनता। जो सदा उसके अंग संग है, कहते हैं पारस के संग लोहा टच हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अब शिव बाबा के संग सदा ब्रह्मा बाबा अंग संग उनके, और कहे नहीं बच्चे मुझे भूल जाता है, तो मैं समझता हूं बच्चों को आदत देने के लिए, हाँ बच्चे कहीं घबरा न जाएं। इसलिए ध्यान देना कि आत्मा अगर बाबा के संग रहने का अभ्यास करे, मैं केवल आपको तीन बातें बताता हूं, साइलेंस की अधिक नहीं। साइलेंस की अलग अलग अनुभूतियां हैं। तपस्या के अंदर एक डीप साइलेंस, एक स्वीट साइलेंस और एक डेड साइलेंस। डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। आप कहेंगे साइलेंस में भी अंतर है क्या? अब यहां पर आप बैठे हैं, शांति का अच्छा अनुभव है, कोई अशांति वातावरण नहीं है। स्वीट साइलेंस का अनुभव यहां हो रहा है, होता है ना, साइलेंस है लेकिन बहुत मजेदार है, सुख मिल रहा है उसमें, प्यार मिल रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है। ये स्वीट साइलेंस ऑटोमेटिक है, इसके लिए कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती। इतना अच्छा बना बनाया भोजन मिल रहा है, परिवार है, शुद्ध वातावरण है, खुली हवा है। अब बॉम्बे में ऐसी हवा भी नहीं मिलेगी, ठंडक भी नहीं मिलेगी, अगर थोड़ी ठंडी हवा चलेगी तो भी पसीने पसीने आएंगे। लेकिन ऐसे वातावरण में आकर के स्वीट साइलेंस का आप सब, मैं समझता हूं, अनुभव कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? अब स्वीट साइलेंस के साथ साथ कभी कभी डीप साइलेंस का अनुभव करो। डीप साइलेंस किसको कहते हैं? जैसे कोई गहरा उतर जाए, सागर के अंदर चला जाए। ऊपर तो हलचल है, बहुत सारे सागर की लहरें हैं, बातें हैं, संसार सागर है। उन लहरों में भी जो लहराना जानता है वो भी मजे का, आनंद का, मौज का अनुभव करता है। नहीं आता बेचारे को तैरना तो सागर की लहरें उसको डुबो देती, बहा ले जाती। लहरों में भी लहराना आना चाहिए, लेकिन कभी कभी एकदम डीप जाकर के सागर के तले में, जैसे मैं जो हूं जैसा हूं, भ्रकुटी आसन पर तो बैठा हूं लेकिन अंदर जाकर के मैं अपने संकल्पों को देखूं, अपने मन को चेक करूं कहां जाता है, किधर जाता है, और धीरे धीरे सब संकल्पों को शांत करके एकदम शीतलता का, शांति का, गहरी शांति का, कोई संकल्पों में द्वंद नहीं है, हलचल नहीं है। यहां तो अनुभव कर सकते हो, शायद बिजी सिटी में न कर पाते हो, लेकिन कईयों के घर बड़े अच्छे बने हुए हैं, एकांत में बैठते हैं, बाबा के बड़े सुंदर चित्र रखे हैं, कमरे हैं, वहां भी कर सकते हो, ऐसा नहीं वहां नहीं किया जा सकता, लेकिन लक्ष्य जरूरी है। बैठ जाओ ऐसे, बाबा ने दो दिन पहले कहा बच्चे अशरीरी माना सुन्न अवस्था, मुरली में था ना साकार बाबा की, अशरीरी माना सुन्न अवस्था। बच्चा जब उसके आर्गन्स बढ़ाए बड़े होते हैं तब उसको अनुभव होता, गर्भ में वो सुन्न अवस्था में रहता। शायद अंडरलाइन इस बात को किया हो। एक ओर बाबा कहता है आत्मा सजाएं गर्भ में खाती है, और दूसरी ओर उसको आज उस दिन बड़े सरल शब्दों में कह दिया कि जब आत्मा गर्भावस्था में है तो सुन्न है। अब सुन्न अवस्था में उसको दुख और दर्द की क्या पहली होगी? अशरीरी स्टेज माना दुख सुख से न्यारी स्टेज, वो सुन्न अवस्था। फिर दूसरे दिन मुरली चलाता है, कहता है बच्चे नयन से नयन मिल जाए तो आत्मा नजर से निहाल हो जाएगी, पावन बन जाएगी। ये शुद्धि के साधन, बाबा की मुरलियां ही शुद्ध बना रही हैं आत्मा को, लेकिन उन मुरलियों में थोड़ा सा अटेंशन दो, उस पर अभ्यास करके देखो। जब मैं ऐसी मुरली सुनता हूं या पढ़ता हूं तो मेरा पहला ध्यान जाता है कि इसका अनुभव मैं तो कर लू, सबको तो भेज रहा हूं, अंडरलाइन भी कर रहा हूं, हेडिंग बनाता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं उसी का, कि कम से कम इस बात को लोग हाईलाइट कर लें, इस बात पर ध्यान दें कि ये बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहा है। तो कभी कभी उस सुन्न अवस्था का, अशरीरी अवस्था का, डीप साइलेंस की अवस्था का अनुभव करो, जिसके अंदर कोई संकल्पों की भी हलचल नहीं है, अनुभव है, शीतलता है, शांति है, बहुत रस आ रहा है, लेकिन ऐसे लगता है इससे उठूं नहीं, बैठा रहूं। कभी कभी बाबा के नजर में नजर डाल दो, देखो बाबा को। एक दो ऐसे पिक्चर बाबा के बने हुए हैं, अगर ऐसे बाबा को देखो, देखते 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 आप वतन में चले जाओगे। कोई संकल्प रचने की जरूरत नहीं है। जैसे गीत बना ना, बाबा तुझे देखता रहूं, कोई योग लगाने की कोई मेहनत नहीं करो। इतना तो कर सकते कि मैं और कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ बाबा की नजर में ही देखूंगा। ऐसे देखा देखा देखते देखते शरीर ही बन गया, बाबा के समान बन के, ज्योति बन के ऊपर चले गए। तो डीप साइलेंस का अनुभव, गहरी शांति जिसके अंदर कोई हलचल नहीं, संकल्प विकल्प शांत है, वो शुद्ध हो जाएंगे। जितना आप अंदर जाके डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे, उतनी शुद्धता बढ़ती जाएगी, अपने आप सरलता, मधुरता, नम्रता, दिव्यता, ये सारे गुण अपने आप जीवन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कोई चीज अगर अग्नि में पिघला दी जाती है तो मोल्ड करना उसको सहज हो जाता है, ऐसे हमारे संस्कार अपने आप मोल्ड होने लगेंगे, नेचर टाइट नहीं रहेगी, अहम भाव नहीं दिखाई देगा, ऐसा रोब वाले संस्कार होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। वैसे आजकल दुनिया के अंदर समझते हैं रोब के बिना तो काम ही नहीं चलता, नहीं गुस्सा करो, नहीं अहंकार दिखाओ तो ठीक, लेकिन थोड़ा रोबदार तो होना चाहिए, कुछ तो पर्सनालिटी में होना चाहिए ना, लोग पता तो चले कौन है ये। बाबा कहता बच्चे बिल्कुल कोमल बन जाओ। हमने अपनी दादियों को देखा प्रैक्टिकल, उन्होंने अपने अंग अंग को इतना कोमल बना लिया, इतना शीतल बना लिया, जो उनके चेहरे से, उनके हाथ पर भी, ऐसे कभी हाथों को भी हाथ लगाओ, टच करो, ऐसे लगता जैसे हड्डी मांस इसमें है ही नहीं। मैं तो कई बार दादी जी के साथ बैठता था, दादी जी का ऐसे हाथ पकड़ लेता था, अनुभव करता था एकदम जैसे कोमल, संस्कार भी कोमल, स्वभाव भी नर्म, बिल्कुल जो कहो हाँ जी, सहज रीति से हर बात स्वीकार कर लेते थे, लेकिन नियम मर्यादाएं पक्की थी, उसमें लूज नहीं थी, लेकिन एकदम सरलता का, शीतलता का, मधुरता का, नम्रता का अनुभव कराती थी। शुद्ध हो गई ना आत्मा, चेहरे से लगता था कितनी शुद्ध आत्मा है, स्थूल में भी कभी भी मिलो देखो उनकी बातें सुनो, इसलिए बड़ी सरल शुद्ध है। तो शुद्धता आई कहां से? इसी तपस्या से आई ना। तो जितनी आत्मा शुद्ध बनती जाएगी, उतनी उसकी नेचर, उसके हाव भाव, उसका बोल चाल, उसका चलना उठना बहुत रायल हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा व्यक्तित्व। हमारा व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो जाए जो लोगों को लगे कि ये अलौकिक लोग हैं, लौकिक नहीं है, जैसे संसारी लोग हैं ऐसे लोग नहीं है। लेकिन वो जितनी आत्मा जिसकी शुद्ध बन गई है, पवित्र बन गई है, निर्मल हो गई है, उतना उसकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाणी से, चलने से, कर्म से दिखाई दे, ऐसी शुद्धता आती जाए। इसके लिए तपस्या करो, इसके लिए योग करो, ये लक्ष्य रख करके करो कि जितनी इम्प्योरिटी है किसी भी प्रकार की, देखो आज सोने के अंदर अगर इम्प्योरिटी कोई भी खाद मिक्स कर देते हैं कितना टाइट हो जाता है, कहते 9 कैरेट हो गया, अभी 9 कैरेट हो गया, कैरेट ही नहीं रही, कहां 24 कैरेट सोना रियल गोल्ड, कहां मिक्स होते होते आज कितनी मिक्स करके उसको एकदम टाइट कर दिया, कोई जेवर नहीं बन सकता। और बाबा इस आत्मा को संपूर्ण शुद्ध बना करके ऐसा जेवर बनाना चाहता है, सब प्रकार के नग उसके अंदर जड़ दे रहा है, हम सब ऐसे देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन वो पद, वो श्रृंगार करने के लिए बाबा को इस समय मेहनत करनी पड़ती है, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। अच्छे संग में रहो, अच्छा चिंतन करो, जब समय मिले बाबा की मुरलियों की स्टडी करो, जब समय मिले एकदम डीप चले जाओ, संगम पर डीप साइलेंस का अनुभव, और बीच बीच में स्वीट साइलेंस का अनुभव, और कभी कभी डेड साइलेंस का अनुभव। बाबा ने एक बार कह दिया था डेड साइलेंस नहीं होती, अब एक बाबा ने कहा, पहले कहता था बच्चे डेड साइलेंस, फिर कहने लगा नहीं बच्चे डेड साइलेंस नहीं होती, क्योंकि डेड हो जाएगी आत्मा तो क्या अनुभव करेगी। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि परम धाम की स्थिति जिसके अंदर कोई भी हलचल नहीं, संकल्प विकल्प, वो डेड साइलेंस का ही तो अनुभव है। परम धाम में जब आत्मा है तो कोई अनुभूतियां हैं, हलचल है। हम यहां बैठ करके परम धाम का अनुभव करें इसलिए स्वीट साइलेंस कहते हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा एकदम परम धाम की ऊंची स्टेज में बैठ जाए, जैसे बाबा परम धाम में रहता है, जब तक समय नहीं आता तब तक संकल्प की रचना नहीं कर सकता है। समय आता है, बाबा सूक्ष्म रत्न रचता है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी की रचना करता है, और फिर नई सृष्टि का संकल्प उत्पन्न होता है। इसलिए कहते ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, शिव ने संकल्प से सृष्टि रची, ऐसा कहा नहीं गया है कहीं। जब शिव बाबा को धरती पर आना है तब सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप को एडाप्ट करता है, बनाता है, संपूर्णता को इमर्ज करता है, और फिर संकल्प रचता है कि मुझे सृष्टि का कल्याण करना है, जाना है। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है। और इस समय हम सब आत्माएं अब संकल्प करो कि मुझे उस स्वीट साइलेंस और डेड साइलेंस का अनुभव करने के करके ही उठना है। बैठ जाओ एक घंटा तो कोई भी इधर उधर के संकल्प न चले, पावरफुल तपस्या, उससे आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। जो संस्कार आपके ऐसे होंगे जो बार बार बाहर आते हैं, निकलते हैं, क्योंकि ऐसे कई बार अच्छे वातावरण में पता नहीं चलता, हमारे को अच्छे संग में, अच्छे परिवार में, अच्छे सब पालना के अंदर हम पलते हैं तो लगता है हमारे संस्कार तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कोई ऐसा संग मिल जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, फौरन बाहर आ जाते हैं संस्कार। तो बीज के जैसे, बीज को अगर कोई संभाल के रख दिया जाए अपने मटके के अंदर, अपने घर के अंदर बांध के पोटलियां रख दो, तो बीज तो अंकुरित होगा ही नहीं, लेकिन जब उसको हवा पानी मिट्टी कहीं मिल जाएगी थोड़ी तो उसमें शंकु निकल जाएगा। अगर उस बीज को जला दिया जाए, भून दिया जाए, फिर भूना हुआ बीज रखा हुआ हो तो क्या होगा? तो कम से कम ऐसी तपस्या करो जो वो बीज से अंकुर निकलने के चांस है वो न रहे। बीज तो है, वो जला नहीं, लेकिन उसको हमने जैसे योग की अग्नि में, बाबा के प्यार में, ये प्यार की अग्नि है, वो आग तो थोड़ी है तेज हो जो जल जाएगी, लेकिन एक लगन की अग्नि है, मगन आत्मा हो जाए, स्वरूप में स्थित हो जाए, आप देखो अपने आप वो शीतल होती जाएगी, संस्कार चेंज हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस भट्टी के अंदर आप सब ऐसा लक्ष्य लिया होगा कि मुझे एकदम प्योर शुद्ध बन करके यहां से जाना है। जो संस्कार ऐसे हों, अगर मान लो तपस्या से नहीं चेंज हुए हैं, महसूस होता है कि संस्कार है, तो प्रतिज्ञा करो। तपस्या करके नहीं चेंज कर पाए हो, प्रतिज्ञा कर लो, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा मैं आपके आगे ये संकल्प में दृढ़ता से कर रहा हूं कि ये संस्कार को मैं एकदम समाप्त करके जाऊं, आप मुझे मदद करना, आप मुझे साथ देना। सच्चे दिल से अगर कोई ने महसूस कर लिया तो वो संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएगा, आत्मा शुद्ध बनती जाएगी, और उस शुद्धता के अच्छे वाइब्रेशन अच्छा आभा मंडल क्रिएट करते हैं। जो बहुत शुद्ध आत्माएं हो जाती है ना, उनका आभा मंडल बहुत आकर्षक हो जाता है, उनका चेहरा भी सबको बड़ा अच्छा लगता है, उनसे लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं यहां देखता था हमारी परदादी कभी कभी आंगन में बैठती थी, परदादी जानते हैं ना, निर्मल शांता दादी, इतना शुद्ध प्योर आत्मा बन गई, बैठ जाती थी ऐसे कुर्सी पर बिठा देते थे, चारों तरफ से लोग जैसे कहते हैं ना, चीनी कहीं आ जाए, गुड़ पड़ा हुआ तो मक्खियां आ जाती है ना सब तरफ से। ऐसे दादी अगर बैठ गई इसे तो कोई को बुलाने की जरूरत नहीं, एक आया, दो आया, तीन आए, खड़े हो गए, चारों तरफ से घेर लिया और उनकी बस दृष्टि ऐसे पड़ती थी, बड़ी सरल, बड़ी मीठी, ऐसे लगती थी दादी को देखते ही रहे। क्या था ये सब? शुद्धता का प्रभाव था, प्योर थी, कोई के प्रति कोई घृणा, नफरत, कोई के गुण अवगुण, किसी के ऊपर कोई आकर्षण नहीं, तो वो शुद्धता थी। और वो शुद्धता एक चुंबक की तरह खींचती थी। जितनी हमारी ये शुद्ध आत्मा बनती जाएगी, मैं आत्मा शुद्ध बनता जाऊं, उतना वो आकर्षण बढ़ेगी। दैहिक आकर्षण नहीं, वो समाप्त हो गई, लेकिन आत्मा प्योर बन गई, जिधर जाती है उधर सब की प्रिय है। जितनी प्योरिटी बढ़ गई उतनी उसकी सबके प्रति प्यार बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, रिस्पेक्ट मिलने लगा। और कई होते हैं, बैठे होते हैं, उनके सामने कोई जाना नहीं चाहता, साइड से किनारा करके निकल जाते, पता नहीं कुछ कह न दे, कुछ बोल न दे। अगर उनके विचारों में कुछ है तो हो सकता बोल भी दें। हमारी दादी प्रकाशमणि जी आंगन में बैठती थी, शायद आप लोगों ने देखा हो, ये गेट है ना जो दीदी के कमरे के ऑफिस के आगे, यहां बैठ जाती थी। कोई भी एक भी व्यक्ति आंगन से क्रॉस करके बिना दादी की दृष्टि से बाहर नहीं जा सकता था। अगर कोई साइड से जा रहा हो, देख ले दादी, भले आपसे बात कर रही है, इधर आओ, ऐसे करके बुला लेती थी। बात हमसे ये कर रही है, लेकिन कोई साइड से क्रॉस करके जा रहा है तो ऐसे नहीं दादी से छिप के जा सकता है, बुला लेती थी। और बड़े प्यार से आकर के दादी से मिलते थे, देखते थे। दादी कुछ नहीं कहती, ऐसे नहीं पूछ रही उसका चार्ट क्या है, ठीक है तबीयत, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ, कहाँ जा रहे हो, जाओ। एक मिनट बिना मिले हुए कोई नहीं जा सकता था। इतनी सरल, इतनी मतलब मधुर आत्मा बन गई शुद्धता के आधार से, जो एक चुंबक की तरह आकर्षण करने लगी। इन दादियों ने पुरुषार्थ किया, करके आत्मा को इतना पावन बनाया, तब बाबा के साथ गई। हम सभी भी लक्ष्य रखें, आई है इम्प्यूरिटी, देहमान के कारण आई है, हम सब जानते हैं, कोई न कोई हमारे सबके संस्कार नेगेटिव बने हैं, लेकिन अगर लक्ष्य पक्का है और तपस्या कर रहे हैं तो हमारे जीवन में वो लक्षण दिखाई देने चाहिए, लगे कि सचमुच इन्होंने योग किया है, अभ्यास किया है, इनकी वाणी, इनका बोलना, इनका देखना, इनका चलना, इनका कर्म, कर्म भी एक साक्षात्कार कराने लगता। कई बार कहता ना बाबा कि कर्मों से गुणों का दान हो, मनसा से हम शक्तियों का दान करते हैं, वाचा से हम ज्ञान दान करते हैं और कर्मणा से गुण दान कर रहे हैं। और विशेष करके बाबा जब दादी जानकी को देखता था, हमेशा बाबा के शब्द निकले, बच्ची गुणों का दान करती है। आज तक भी आप देखो, जब हम लोगों को कोई थकावट महसूस होती ना, नहीं जाना, नहीं करना, तो दादी का याद आता सकल, देखो 104 साल में कभी भी क्लास के लिए, योग के लिए, सेवा के लिए ना नहीं किया, फट से उठ के खड़ी हो जाती, शरीर साथ नहीं दे रहा है, आत्मा इतनी बलवान है, फट से खड़ी हो जाती है, हम चलेंगे, हम करेंगे। अभी कुछ दिन दादी रतनमय दादी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में थी बॉम्बे में। अब दादी जानकी इतनी बड़ी एज में विदेश से आई थी, यहां पर ग्रुप्स आए, दादी को खुद लगा कि मैं रोज मुरली सुनाऊं, और लगातार जानकी दादी ने शांतिवन में मुरली सुनाई है, अभी 15 दिन पहले की बात कर रहा हूं। उसके पहले पांडव भवन आई, पांडव भवन में सुनाई, अभी लंदन गई तो लंदन में मुरली सुना रही है। क्या शक्ति है, कहां से अशक्ति आ रही है, गुणदान हो रहा ना, नहीं तो इतनी उम्र के अंदर शरीर साथ नहीं देता है, कई प्रकार की बीमारियां भी हैं, लेकिन आत्मा बलवान है, शुद्ध है, पवित्र है, जो संकल्प करती वो कर रही है, शरीर साथ दे रहा है, तो ये गुणों का दान हो रहा है ना, ऑटोमेटिक गुणदान हो रहा है, कहे थोड़ी रही तुम मेरे से सीखो कुछ, सिखा रही है। तो हम सभी भी अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से गुणदान करना सीख जाए, और गुण तभी लोग सीखेंगे जब हमारे गुण में, हमारे कर्मों में इतनी शुद्धता आती जाएगी। कभी भी कोई कर्म करो कर्तापन का भान ना आए कि मैंने किया है, मैं नहीं होता तो कोई नहीं करता। बाबा ने उस मैं को मारा, दादियों ने मैं को जड़ से समाप्त किया, कभी नहीं कहा मैंने किया है। कभी कभी हम लोग हंसी में कहते, दादी आप बैठी ना तो सब हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बैठना भी बहुत बड़ी सेवा है। तो कभी कभी आंख दिखाते, क्या बोला, मेरे बैठने से हो रहा है, बाबा बैठा है, बाबा बैठ के करा रहा है सब कुछ, मैं नहीं कर रही हूं। उन्होंने मैं शब्द को ही समाप्त कर दिया, नहीं तो उनके पवित्र वाइब्रेशन, उनकी प्योरिटी कितनी कमाल कर रही है। आज इतना बड़ा यज्ञ कैसे चल रहा है, आज इन आत्माओं की अंदर की भावनाएं, उनकी छत्र छाया इस यज्ञ को निर्विघ्न बना के चला रही है। आने वाले हरेक अनुभव करते हैं कि हमने बहुत कुछ यहां से प्राप्ति किया। पहले दादियों को लगता था अगर कोई एक नहीं होगी तो कैसे चलेगा, और अभी एक भी नहीं है तो इतना अच्छा चला रहे हैं सब। उनकी छत्र छाया से चल रहा है, उनकी शुभ भावनाओं से चल रहा है, उनकी पवित्र दृष्टि से चल रहा है। तो हम सब देखें, अनुभव करें, और सिर्फ देखें अनुभव करें नहीं, लेकिन ऐसे बने कि हमारे भी संकल्प इतने पवित्र शुद्ध हो जाएं, आत्मा इतनी सरल पावन बन जाए जो ये आभा मंडल अपने आप सेवा करने लगे। जिस तरह देखो ना, आभा मंडल, पवित्र आभा मंडल जाएगा, ओरा जाएगा, और वो लोगों के जीवन को परिवर्तन करेगा। तो वर्तमान समय की आवश्यकता है, और हम सब तपस्या के द्वारा इस मधुबन घर से एक संकल्प करके जाएं, अगर कोई भी ऐसी अशुद्धता है, स्वप्न में भी है, कर्म में भी है, तो बाबा के कमरे में जाना, बहुत प्यार से बाबा को देखना, और बाबा को कहना, बाबा ये ले लो, मैं लिख के दे देता हूँ, आज से प्रतिज्ञा करता हूँ सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो तपस्या भी करो और साथ साथ सच्चे दिल से बाबा के आगे अर्पित कर दो, तो वो संस्कार सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।
जाए।